તારીખ 16/2/1989 શ્રી પ્રયોજન સિદ્ધિશાસ્ત્ર ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 29.
અધ્યાત્મ રસ નહીં આવે તો ભી આપત્તિ વક્તા કે મુશ્કેલ કી બાત ઉસકો દર્શન બઢેગા ક્યો બઢેગા ક્યોંકિ એસે પ્રસંગ મેં राग रस या कल्प रस या कथन शैली का रस तीनों पुद्गल रस है वो वृद्धिगत हो जाएगा। दर्शन मुख ऐसे बढ़ता है कि पुद्गल रस वृद्धिगत होने से दर्शन मुख आया, पुद्गल संबंधी रस ये बढ़ने से दर्शन बढ़ता है। पुद्गल संबंधित रस इसकी रुचि को सूचित करता है। विपरीत रस और विपरीत रुचि से दर्शन मोह तेज हो जाता है। तो किसी को ये जो भाषा शैली है उनका रस है, तो किसी को विषय जो राग है राग का रस आता है, अध्यात्म है, ये किसी कारण से दर्शन मोह आती होता है। जी
राग और विकल्प में क्या अंतर?
नहीं, राग और विकल्प करीब एक अर्थ में ही लिया है, एक अर्थ में लिया है यहाँ पर, तो एक अर्थ में लिया है। ऐसे विकल्प में कभी कभी ऐसा बात है कि ज्ञान के भेद को भी विकल्प कहते हैं, और रात तो सीधा ही चारित्र गुण का परिणाम है। यहाँ पर दोनों एक अर्थ में है। या ऐसे सब किसी को ऐसा शुभ राग का रस विकल्प में इस प्रकार के क्षोभम का रस आता हो, बाहर क्षोभम का रस आता हो, या जो कथन करने की जो पद्धति है उसका रस आता हो, तो ऐसा शास्त्र स्वाध्याय जो है इस प्रकार के रस सहित का वो वक्ता को अवश्य नुकसान करता हो, तो दर्शन का नुकसान बड़ा है इसमें। शास्त्र और सत्संग दोनों एक ऐसी चीज है कि जहां से सभी प्रकार के दुर्गुण मिटने का एक प्रसंग है, जहां अवगुण मिटने का दोष मिटने का प्रसंग हो, उसी निमित्त से उसी साधन से दोष बढ़े, फिर दोष कहां से मिटेगा? फिर दोष मिटने का कोई जगह ही नहीं रही, कोई अवकाश नहीं रहा फिर इनके लिए, ये बात हो जाएगी। अब इसकी उल्टी परिस्थिति लेते हैं यहां पर, जबकि सम्यक्त्व के नजदीक जाने वाले जीव मुमुक्षु जीव जो सम्यक्त्व के करीब करीब नजदीक जा रहा है, उनकी यथार्थ समझ होने से वो अपनी समझ को परिणमन में उतारने का पुरुषार्थ करता है, या अपनी समझ को अपने चलते परिणमन में लागू करने का उसको प्रयास रहता है, उद्यम रहता है कि मेरी समझ को मैं कार्यान्वित कैसे करूं, यही उसका प्रयास रहता है। और जब वो तत्व का प्रतिपादन करता है तो उस काल में, तत्व प्रतिपादन के काल में उसको आत्मभाव का आविर्भाव होता है, वो अध्यात्म रस और आत्मरस को वो आविर्भूत करता है। ये स्वाध्याय करने का कोई मकसद है, इसके पीछे कोई हेतु है, तो उतना है कि उस निमित्त से, उस प्रसंग के निमित्त से अपना आत्मभाव अध्यात्म भाव को विशेष जागृत करें, विशेष उसका आविर्भाव करें, ये इसका कारण है। तो जो सम्यक्त के नजदीक जाने वाले हैं वो ऐसा ही करेगा, और ऐसे रसपूर्वक उनकी ये स्वाध्याय की प्रवृत्ति, तत्व प्रतिपादन की प्रवृत्ति चलती है। वहां पर कहीं भी सिद्धांत नहीं टूटे, ऐसा सूक्ष्म उपयोग पूर्वक वो प्रतिपादन करते हैं, ऐसी सावधानी रखते हैं। ऐसा अभिप्राय है शुरू से ही कि कहीं भी सिद्धांत नहीं टूटना चाहिए, कहीं भी सिद्धांत का खंडन नहीं होना चाहिए, ये इनका अभिप्राय है। उस पर उनकी जागृति है और ऐसा सूक्ष्म उपयोग पूर्वक को प्रतिपादन करता है, तो वहां पर उनका दर्शन वो तीव्र नहीं हो सकता है, वो गलता है, दर्शन मोह मंद होता है। दर्शन मोह में ऐसा लिया है कि प्रथम दर्शन मोह उपशम होता है, नक्षय उपशम होता है, नक्षय होता है। तो उपशम मैंने दबना कब दबता है, जो ताकत वाला है वो कभी दबेगा नहीं, ये तो नियम से बात है। जिसमें जहां तक ताकत है वो किसी से दबने वाला नहीं, तो ताकत क्षीण होने से ही वो दबेगा। तो इस प्रयोजन के हिसाब से, इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए यहां सब बातों की चर्चा की है कि ये दर्शन मोह की ताकत टूटती है तो वो दबेगा, अगर इसकी ताकत बढ़ती है तो उपशम होने का सवाल नहीं, फिर दर्शन नहीं होगा। चाहे कुछ काम, चाहे कुछ प्रवृत्ति करे, चाहे कुछ उपाय करे, उपशम होने वाला नहीं है। उपशम नहीं होगा तो स्वानुभव होने का सवाल नहीं है, ये तो अविनाभावी चीज है कि यहाँ दर्शन का उपशम होवे, उसी काल में ही स्वानुभव हो सकता है। दर्शन का उदय रहे और किसी को स्वानुभव होवे वो तो तीन काल में बन सकता नहीं, तो यही कारण है इस विषय को चर्चा पर लेने का। इसलिए वक्ता को ये दो तीन बातें ख्याल में रखनी चाहिए कि वो सिद्धांत का खंडन नहीं हुए और आत्मभाव का आविर्भाव होने का प्रयास हुए, ये बात साथ हम साथ ही होने ही चाहिए। कभी सम्यक को नजदीक जा सकते हैं, ये पूर्व भूमिका का विषय है नजदीक जाने में, और इस पर कोई चर्चा करनी हो तो करें, बात तो ये दो पॉइंट की है। चर्चा का ये प्रोग्राम चलता है वांछन के बजाय। एक जो पॉइंट है उसको अर्थकथन करें कि इसके पीछे क्या विचार रहा है इस बात लिखने के पीछे, और फिर इस पर कोई किसी को तर्क हुए या विचार हुए प्रश्न चर्चा करते हैं। मुख्य तौर से चर्चा का समय रखा है एक घंटे।
स्वयं
में प्रयत्न नहीं तो प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न नहीं हो गए तो आपत्ति है, प्रयत्न होना ही चाहिए। आत्मा ज्ञानानंद है ऐसा निरूपण क्यों करते हो, ऐसा प्रतिपादन करना क्यों? जीन वचन, लेकिन क्यों? जीन वचन तो है सो है, कोई वचन का रस लेना है, कोई वचन का रस लेना है क्या? क्या इस प्रकार का राग शुभ राग है तो इसका कोई रस लेना है? जो प्रतिपादन करते हैं उस प्रतिपादन के साथ अपना क्या संबंध है, वो बात पहली है। फिर सुनने वाले को सुनने वाला की तो सुनने वाला जाने, सुनने वाले की बात तो सुनने वाला जाने, लेकिन जो कहने वाला है उसको कोई बात से संबंध है या संबंध नहीं है क्या, ये पहली बात है। तो अगर उनको समझ नहीं है तो उनको नहीं प्रतिपादन के स्थान में नहीं बैठना चाहिए। उसको सुनने को बैठना अच्छा है, कहने को बैठना इसके लिए अच्छा नहीं है।
तो क्या गुरुदेव का अवतार गाय गुरुदेव की शक्ति जो है वो सब लोग समझे इस बात को?
लेकिन देव गुरुदेव का उपकार हुआ हो तो उसको ही कहते हैं कि जिसको कुछ लाभ हुआ हो, या तो सम्यक दर्शन हुआ हो या तो दर्शन में मंद हुआ हो, उसको तो उपकार कहते हैं। कोई सुन लिया इसलिए कोई उपकार हो गया ऐसी तो बात नहीं है। ठीक है, जानते हैं, लेकिन जानने के पीछे इसका कोई हेतु है? इस हेतु के हेतु का कोई साफल्य है कि नहीं, सफलता है कि नहीं? वरना क्या होगा कि जानने का क्षोभम का रस होगा, या कहने का कथन का रस होगा, या इस काल में होने वाला शुभराग का रस होगा, तीन में से एक बात होगी। तो तीनों पुद्गल है, राग भी पुद्गल, क्षोभम ज्ञान भी पुद्गल, और कथन वचन तो है स्वयं ही पुद्गल है, उसमें तो कोई विवाद ही नहीं है कि कथन तो होता ही नहीं, पुद्गल एक सेवा। तो तीन में से एक रस तो आ ही गया ही आ गया। अब बताइए कि इसके बाहर कौन जा सकता है? फिर अगर इसमें आत्मभाव या अध्यात्म का आविर्भाव नहीं हुआ तो इस तीन बात में से बाहर कौन जा सकता है बताइए? इसमें एक में तो एक के चक्कर में तो आएगा, कोई वाणी के चक्कर में आएगा, तो कोई क्षोभम के चक्कर में आएगा, तो कोई राग के चक्कर में आएगा, तीन में से कहाँ जाएगा? या तो चौथी बात आत्मरस के आवे, या तीन में से एक में तो फंसेगा ही फंसेगा। अगर यथार्थ बात नहीं रही तो अयथार्थ में तो फंसेगा ही फंसेगा, कोई सवाल ही नहीं। वो तो उसको कामना है कि मेरा दर्शन वो कब हटे, तो वो तो कामना से बैठा है। उनकी इतनी जिम्मेवारी नहीं है जितनी वक्ता की है, प्रतिपादन करने वाले की है। लोगों की जिम्मेवारी अलग अलग है ये बात जरूर है, फिर भी वो कोई ये सही हेतु से सुनने को बैठा हुआ है तो अच्छी बात है। उसको भी कोई शुभराग का पोषण करना हो, उसको भी कोई नई नई बात सुन करके कोई नवीनता की कुतूहलता में रहना हो, या उसको कोई वाणी की पद्धति शैली अच्छी लगती हो क्योंकि वक्तृत्व शक्ति बहुत सुंदर है, तो वो भी दर्शन मोह में फंसेगा। सुनने वाले को तो यही देखना है कि मुझे भी ये तीन जगह जाएगा तो मुझे भी नहीं फंसना है, कहने वाले को नहीं फंसना है तो कोई सुनने वाले को फंसना है क्या? तो उनको भी ये रस नहीं होना चाहिए कि नवीनता का कौतूहल हो गए। ये अपना शुद्धात्म स्वरूप को छोड़ करके दूसरी चीज का कुतूहल, ये शुद्धात्मा की अरुचि का द्योतक है, प्रकाशक है। कुतूहल नहीं होना चाहिए, कुतूहल करो तो अपने स्वरूप के अनजान है इसलिए इसमें कुतूहल करो, जान लिया तो कोई फिर कुतूहल का सवाल नहीं रहता, वो तो रुचिपूर्वक जाना है। अपना स्वरूप को तो स्वरूप की रुचि बिना जान ही नहीं सकते, और जहां तक नहीं जाना हो तो जानने के विषय में जो कुतूहल हो गए वही जो रुचि है उनकी, आनुषंगिक रुचि है वो उनकी, बस ये रुचि में रहना चाहिए। न शुभराग की रुचि, न क्षोभम नई नई बात जानने की कुतूहल की रुचि, न कोई वाणी की पद्धति की रुचि, कथन पद्धति की रुचि। देखिए गुरुदेव का दृष्टांत बहुत बड़ा सुंदर है कि वो कोई अच्छे वक्ता नहीं थे। अगर वक्ता का कोई विशेषताएं देखी जाए तो गुरुदेव से तो अच्छे अच्छे वक्ता बहुत है लगन जगत के अंदर, जगत के अंदर जो अच्छी तरह अपना वक्तव्य को कह सके, और इनकी जो कला है वो बराबर दिखा सके। फिर भी गुरुदेव के प्रवचन में वक्तृत्व की विशेषता उतनी विशेष नहीं होने के बावजूद भी कौन सी ऐसी चीज थी कि जिससे रस आता था हमें, कि उसका जो आत्मरस है अध्यात्म रस है वो ही एक ऐसी चीज थी कि जो हृदय को स्पर्श करती थी, एक सेकंड के असंख्य भाग में क्या आत्मा है, ज्ञानानंद है, निर्मलानंद है, प्रज्ञाभम श्रम स्वरूप है, ऐसा ऐसा कोई विशेषण था उतना वो आत्मरस से भीगे हुए वो वचन आते थे, तो उसमें रस आता था। बात तो वो की वो हजार दफे सुने, सैकड़ों दफे सुने, लेकिन इसमें रस क्यों आ गया? वरना तो एक ही बात अनेक बार सुनने से रस नहीं आता है। कुतूहल में तो नवीनता का रस रहता है, इसमें तो कोई नवीनता नहीं आती है। पर गुरुदेव ये कहते हैं हमारा तो नवीन नवीन भाव होते हैं, कुछ बेंच भी ये कहते हैं कि हमको तो अपूर्व लगता था, नवीन क्या क्या कहते
अपूर्व,
आत्मा में ये आत्मभाव है वो अपूर्व लगते थे। वो ऐसे आत्मभाव है, अपूर्व भाव है, गुरुदेव के भाव अपूर्व है, तो वाणी को अपूर्व कह दिया। फिर यही कारण था रस आने का, और अकेला क्षोभ का रस आने, नई नई बात करने का। सुगानी जी तो ये कहते हैं कि जिसको ऐसे क्षोभ में रस आता है और बोलता है तो हमको तेरी बोली काग पक्षी जैसी लगती है। क्या बोले? ऐसा कहा है, इसका मतलब क्या है? तो उसमें शुष्कता है, कठोर मानी लगती है, कोई आत्मरस से भीगी हुई बात नहीं है तो अच्छी नहीं लगती। अजीत भाई तो पता ना प्रश्न कह ठीक बात है, बात तो वक्ता की चलती है लेकिन श्रोता ने तो श्रोता के लिए प्रश्न उठना चाहिए, फिर हमारी क्या हमको क्या करना है, कैसे सुनना है। अगर आत्महित को मुख्य करके नहीं सुने और दूसरा कोई किसी भी प्रकार का हित मुख्य हो जाए तो ये गड़बड़ हो ही जाएगी सुनने वाले के लिए। कहने वाले और सुनने वाले को हेतु तो एक ही होना चाहिए। ठीक है परीक्षा हो, लेकिन फिर भी सिर्फ परीक्षा करना करने से ही काम नहीं होगा, अपना भी संभालना पड़ेगा ना। और परीक्षा भी इसलिए करना है कि हमारा जो हेतु है वो सफल होता है कि नहीं होता है, इसमें भी यही एक हेतु है। परीक्षा करने का हेतु नहीं है, लेकिन अपना जो आत्महित करने का वो हेतु की सफलता और विफलता के कारण परीक्षा करनी पड़ती है। सभी को सुनने को बैठ जावे, जो भी कहने को वो कहने वाला हो अगर सभी को सुनने को बैठ जावे, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ ऐसे मुख्य तौर से तो ये अधिकार तो मुनिराज का ही है, गुरु गुरुपद है वो, निर्ग्रंथ गुरु है, उनका ये अधिकार है। फिर भी इस काल में वो नहीं है तो जिन्होंने वो मार्ग जाना हो, जो अनुभूत हो, वो अनुभवी की वाणी निमित हो सकती है देशनाल लब्धि में, तो पात्र होकर के सुनने में तो कोई नुकसान नहीं है, पात्र होकर के ये बात है। पात्रता नहीं हुए तो फिर ध्यान चले जाएगा दूसरी ओर, को क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और क्या क्या बातें हैं, ये बात चली जाएगी। बाह्य दृष्टि तो है ही, बाह्य दृष्टि तो वैसे ही संसारी जीव को है, तो बाह्य दृष्टि से बाह्य बातों मुख्य हो जाएगी, मूल चीज रह जाएगी, इस पर ध्यान नहीं जाएगा। तत्व प्रचार और धर्म प्रभावना आदि कार्यों में रस अथवा उसकी महत्ता के कारण प्रत्यक्ष में विद्यमान सत्पुरुष का समागम का अवकाश नहीं लेना, अर्थात प्रत्यक्ष में विद्यमान योग रूप सत्संग को गौण करके तत्व प्रचार और प्रभावना के धर्म प्रभावना के कार्यों में बाह्य प्रवृत्ति में अपनी शक्ति अपना रस अपना समय खर्च करने से दर्शन मोह पड़ता है। देखो ये दर्शन मोह का अपराध है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात है, ये बात लिया है श्रीमद जी ने 200 नंबर में, वो बात लिया है। वहां दर्शन हो के जगह ऐसा शब्द लिया है अनंतानुबंधी का ये मूल है, यानी मूल में यही अनंतानुबंधी है। करता है तो शुभ प्रवृत्ति, व्यापार धंधा कारखाने नहीं लगाता है, दर्शन मोह अनंत काल परिभ्रमण में मुख्य कारण है। बाकी तो सब कर्म जो है तो बेचारे इनके अनुचर है, राजा तो ये है सब कर्मों का राजा तो दर्शन मोह। ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी से ही होनी चाहिए, यह स्वाभाविक समझ में आवे ऐसी बात है। ज्ञान की प्राप्ति ज्ञानी से होवे यह स्वाभाविक तौर से समझ में आए ऐसी बात है, वो तो कॉमन सेंस की बात है। फिर भी जीव लोक लज्जा आदि कारण से, कोई भी आदि मैंने किसी भी कारण के, भय हो अपमान हो लोक लज्जा हो सगा संबंधी हो कुछ भी कारण हो लोभ हो मान हो कोई भी, अज्ञानी का आश्रय नहीं छोड़ता, उसको पीछे चले जाता है और प्रत्यक्ष ज्ञानी का आश्रय नहीं करता, यही अनंतानुबंधी कषाय का मूल है। ये बात लिया है अनंतानुबंधी कषाय का मूल है, तो यहाँ ये बात दर्शन मोह को बढ़ने में ली है, इसलिए कि वो जो दर्शन मोह टूटने का प्रत्यक्ष कारण है उनको तो गौण करता है और खुद ही दूसरों को समझाने के लिए उनको रस आता है, अपना दर्शन मोह तोड़ने के लिए तो उनको रस नहीं है, उतना रस वो लेते हैं दूसरों को समझाने के लिए। वो कहते हैं कि हम तो तत्व प्रचार तो करते हैं, कहते हैं कि ये दर्शन मोह अवगणना हुई, क्या हुआ गौणता हुई, मैंने अवगणना हुई सत्पुरुष की अवगणना करने से देव गुरु शास्त्र तीनों के अवगुणना आगे जा करके हो ही जाएगी, उसमें ये भूल खड़ी होगी होगी और होगी ही। ऐसा है कि जिसको अंतर सत की और जाना है, जिसमें अपना सत परमात्मा की ओर जाना है, ऐसे जीव को जिसने ऐसा सत परमात्मा प्रकट किया है उसके संग का रुचि आएगी होगी होगी और होगी ही, उसमें दूसरा होता ही नहीं कभी। ये तो मुमुक्षु की बात किया आपने पूछा हो, अब मैं सोगाने जी का प्रत्यक्ष दृष्टांत दिखाता हूँ। बहुत द्रव दृष्टि का विषय भूत जो आत्मा, इनका कितना जोर था, उनका कितना जोर था, फिर भी गुरुदेव के संग के लिए कितनी तड़पन थी। ये इनकी प्रत्येक चिट्ठी में ये बात हमेशा आती है, हैं तड़पता हूँ छटपटाता हूँ और अभी इनका वियोग महसूस होने से आंखों में से गर्म आंसू निकलते हैं चिट्ठी लिखते लिखते, ये ज्ञानी धर्मात्मा की ये हालत है। ऐसा ही होता है राग में, ऐसा ही राग
तो इनके अभाव में अपने परिणाम नीचे होते हैं, ऐसा वो कल्पना करता है।
नहीं हाँ, उसको जो अगर सत्संग का भाव नहीं रहता, प्रत्यक्ष योग का भाव रुचि नहीं रहते, तो जो वो अंदर में जागृति की बात है कोई इसमें धोखा है, उसमें धोखा हो गया है, उसको ऐसा लग गया है कि मैं कुछ अंदर में ज्यादा काम करता हूं, ऐसी बात नहीं। देखो ये श्रीमद् राजचंद्र चौबीस साल में उनको सम्यक दर्शन हुआ, तीव्र मुमुक्षु तो वो थे ही इसके पहले। अब दशा विशेष होने पर भी क्या लिखते हैं, ईश्वर इच्छा होगी वैसी प्रवृत्ति होगी। मैंने ईश्वर इच्छा, मैंने कुदरत से के क्रम में तो सामने वाले को जो व्यवहार है वैसा व्यवहार करते हैं, ईश्वर को ऐसे ईश्वरकर्ता नहीं मानते थे, लेकिन कुदरत में जो प्रवृत्ति होने वाली होगी सो होगी, और जो भी होगा ठीक ही मान लेंगे, सुखदायक मैंने ठीक ही मान लेंगे, जो होगा सो होगा, कोई इष्ट अनिष्ट का विकल्प हमारा नहीं चलता है। फिर भी मैंने बाह्य प्रसंग में अनुकूल प्रतिकूलता का कोई कल्पना नहीं होती है, जो भी होने वाला है वो होगा। फिर भी मन मेलापी सत्संग, मैंने यथार्थ संग, कोई महापुरुष का महात्मा का संग चाहिए उनको, जिसमें अपना जो मन है उनको ऐसा लगे कि नहीं ये बस ये सत्संग है, ये कोई बहुत बढ़िया चीज है, जिसमें मन शांत हुए, मन को मन की तृषा छिपे जिसे, ऐसा सत्संग, उसको मन मिलापी काठियावाड़ी भाषा से। सत्संग बिना कालक्षेप होना दुर्लभ है, हमारा तो काल नहीं जाता है, बिना सत्संग हमारा काल व्यतीत नहीं हो रहा है। मोक्ष से भी हमको संत चरण की समीपता बहुत प्रिय है, इतना तो मोक्ष भी हमको नहीं प्रिय है जितने हमको सत्संग प्रिय है, ऐसा बोला है। चौबीस साल में भाद्रपद में साल भर हो गया है, करीब करीब एक साल हुआ है, दस महीना तो समझो उनकी दशा विशेष हमें दर्शन होने के बाद दस महीना हुआ है। भाद्रवा महीना का ये भाद्रपद का पुत्र है ये, फिर भी हरि इच्छा आगे दिन ही दिन है, हरि इच्छा मैंने कुदरत के आगे, कोई कुदरत का ऐसा मेल नहीं बैठा है, तो लाचार हैं हम कि कोई हमको संत नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कोई संत नहीं मिल रहे हैं, इसलिए सुभाग भाई को पत्र लिखा है, बार बार आपकी स्मृति होती है, कोई सत्संग के योग्य हैं तो आप है, बाकी तो और कोई है नहीं जिसमें हमारा कोई मन शांत हो रहे, ऐसा कोई सत्संग नहीं मिलता है आजकल, यही हमारी वेदना है, इसकी ये वेदना बोलते हैं।
गजब का भाव है,
उनका हृदय बार आया है, उनका हृदय बार आया है, ये बात है, कोई तर्क हो सकता है इसमें कि मोक्ष से भी सत्संग हमको बहुत प्रिय है, संत चरण की समीपता हमको बहुत प्रिय है, ये बात कोई ठीक नहीं बैठती है। कहते हैं कि जिस योग्यता में जिस चीज की आवश्यकता हो वहां वही चीज चलती है। एक आदमी ने या तो दर्द हो या कोई दूसरे कारण से उपवास कर लिए 8 दिन के, फिर उनको कोई भारी मिठाई खिलाओ तो क्या होगा? गुरुदेव कहते हैं ना मैसूर, एक किलो लोट में 4 किलो घी डालें, ऐसा मैं उसको खिलावे क्या करें, मर जाए? उनको तो मूंग का पानी चाहिए, उसको तो पानी से शुरू करना पड़े। उनके काल में तो कोई थे नहीं ऐसे महात्मा, तो उनको वेदना तो फिर होती रही, और जिसको हुए और नहीं मिले उनकी हालत क्या होंगे देख लो सब। जिसको नहीं हुए तो भी वेदना तो होवे ही होवे, और होवे फिर नहीं मिले तो भी वेदना तो होवे ही होवे, यही हालत है। ये बहुत कुदरती चीज है।
पहचानने के लिए अपने में क्या पात्रता होनी
चाहिए, अपने में क्या बात
पात्रता होनी चाहिए, मतलब किस तरह से सतपुरुष को पहचान सकते हैं।
हाँ, उसमें तो पात्रता अपनी होनी चाहिए, उस पात्रता वश बात तो ये होनी चाहिए कि अंतर खोज होवे मार्ग मिलने के लिए, के साथ चर्चा होती है तो एक बात बोलते हैं सुनने में तो साधारण लगे लेकिन मर्म है इसके पीछे। गुरुदेव ने मार्ग बताया है ऐसा बोलते हैं, गुरुदेव ने आत्मा बताया ऐसा बोलने के बजाय मार्ग बताया ऐसा बोलते हैं, इसके पीछे रहस्य है कि खुद मार्ग का खोजी था, अंतर्मुख कैसे होना ये बात सूक्ष्म से सूक्ष्म रही तत्व का तत्व आत्मनः तत्वम। अमृतचंद्राचार्य ने कहा आत्मनः तत्व, आत्मा तो तत्व है, पर भगवान आप कहते हो कि आत्मा का तत्व, कहा आत्मा का वो तत्व का तत्व अंतर्मुख कैसे होना, ये मार्ग जो है वो गुरुदेव ने बताया। तो अगर इस मार्ग का कोई खोजी होता है और मार्ग नहीं मिलने से जो परेशान है हैरान है बेचैन है ऐसी पात्रता में आता है तो जहां जो मार्ग बताने वाला है उसको उसका पता चल जाता है। वरना तो मार्ग बताने वाले तो अनंत बार मिले हैं लेकिन खुद को खोज नहीं चलती थी, तो बताने वाले बता दिया लेकिन हमने देखा नहीं। जब हमारी गरज हुई तब दिखाने वाले का पता चलता है, अच्छा ऐसे होने की वो बात करते हैं, ऐसे अंतर्मुख जाने की बात करते हैं, तो ये पता चल जाता है, तो उनको प्रतीति आ जाती है कि कहने वाला इस मार्ग से गुजरा हुआ है, ये बात बिल्कुल प्रतीति में आती है। तो इसकी जो अंतरंग परिणति है उसमें उसको दिखती है। और अंतरंग परिणति क्यों ऐसी हुई कि जो अंतर तत्व स्वरूप परमात्मा है, अंतर तत्व स्वरूप है, उसको चिपकी हुई है तब तो ये ऐसी हुई है, तो उसको परमात्मा का दर्शन होता है। इस परिणति का अवलंबन भूत जो विषय है परमात्मा उसका दर्शन उसको वहां होता है। तो सतपुरुष के माध्यम से, प्रगट सत के माध्यम से अप्रगट सत का उसको दर्शन होता है, उसको पता चलता है, प्रतीति आता है कि ये सतपुरुष है। फिर इनके लिए जो उनको भाव रहता है वो कोई कहने की चीज नहीं रही, इसलिए सोगानी जी ने कहा कि हमारे लिए तो ये अनंत तीर्थंकर से भी अधिक है। कितने अब एक तीर्थंकर के भावी निगम के रूप में स्थापित करने में लोगों को फांसी लग गई। वो कहते हैं कि अनंत तीर्थंकर से भी मेरे लिए तो अधिक है, तो इस भावना को अनुमोदन देना या इस भावना को ठुकराना क्या करना है? हमारी भी जिम्मेवारी है, अगर हम अनुमोदन नहीं करेंगे तो हम ठुकराएंगे, यही बात हो जाएगी। लेकिन कईयों को नुकसान हो गया ना, ये सवाल पैदा होता है, भैया ऋषभदेव भगवान की वाणी खिरी तो 363 पाखंड खड़े हो गए, इसके पहले कोई अन्य मत नहीं थे, नरक गति चालू हो गई, मोक्ष गति भी चालू हो गई, नरक गति भी चालू हो गई। तो किसी पागल ने यह कहा कि वाणी को बंद करो, क्यों? अरे ये पाखंड खड़े होने हो जाते हैं, सब नरक चालू हो जाता है, इसको बंद करो बंद करो बंद करो। अरे भैया तू किसको देखता है, ये मोक्ष गति चालू होगी उसको तो तू देखता नहीं है, और नरक गति चालू होगी उसको देखता है, तेरी भी दृष्टि कमाल है। ये बात तो बिल्कुल उचित नहीं है, किसको कितना लाभ होगा ये कौन जानता है, नुकसान का तो हिसाब किताब लगाते हैं, लाभ का तो हिसाब किताब भी है। दोनों प्रकार के योग्यता वाले जीव संसार में होते हैं, किसकी गिनती करनी है, ये तो वस्तु स्थिति है कि एक चीज सत्य खड़ी होगी तो दो मत होगा ही होगा, क्योंकि संसार में भी परिभ्रमण करने वाले बहुत हैं, इनकी संख्या ज्यादा होती है हमेशा, समवसरण में भी मिथ्या दृष्टि ज्यादा होते हैं, सम्यक दृष्टि कम होते हैं, मुनि इससे कम होते हैं, केवली इससे भी कम होते हैं, लेकिन जो कम होते हैं उनकी कीमत ज्यादा है, ज्यादा होते हैं उनकी कीमत ज्यादा नहीं, ये बात है। ये तो कहीं समाज में गड़बड़ी हो जाए, लेकिन जिसको लाभ होगा उसका क्या, गड़बड़ी तो होगी अपनी योग्यता से, गड्ढा तो शक्कर खाएगा तो भी मरेगा, तो फिर मनुष्य शक्कर नहीं खावे क्या, क्या करना शक्कर को जगत में से नाश कर दो, क्योंकि गड्ढे लोग मर जाते हैं, ऐसा नहीं है। एक ही चीज एक जीव के लिए अमृत हो जाती है तो दूसरे के लिए जहर हो जाती है, भगवान की वाणी के लिए, ये तो प्रसिद्ध बात है इतिहास में, भले ही करोड़ों अरबों ना अरबों के अरबों वर्ष चले गए, एक कोड़ा कोड़ी सागर चला ना, एक कोड़ा कोड़ी सागर बीत गए, फिर भी इतिहास में ये बात प्रसिद्ध रह गई कि भगवान की वाणी खिरी इस वक्त 363 पाखंड चालू हुए हैं, नरक गति भी इसके पहले चालू नहीं थी क्योंकि यहाँ भोग भूमि चलती थी, कर्म भूमि थी नहीं, वाली चीज है दुनिया में, ऐसा ही होता है, अपने को तो सार ग्रहण करना है, बाकी तो उसका जो होने वाला है वो होता रहता है। विरोध करने लगे, विरोध करने लगे लोग, तो सामने तो नहीं कह सके, तीर्थंकर देव का पुण्य बहुत होता है, भीतर में विरोध करें, गलत बात है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसे तो उसको विरोध आता है, उस विरोध होने से पुनरक विरोध का कारण है, सत का विरोध, बस देव गुरु शास्त्र और सत्पुरुष उसकी गौणता करो, उसकी अवगणना करो, इसका विरोध करो, तीनों का फल एक ही है, करना करवाना और करते हैं उसको अनुमोदन होना, जान करके जान जाने में सभी का फल एक है। इसलिए कहते हैं कि विद्यमान सत्पुरुष का ज्ञानी का योग को समागम को गौण करके जब तत्व प्रचार और धर्म प्रभावना का कार्य में रस लेने का निषेध है तो फिर दूसरी कौन सी बात का निषेध नहीं हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता।
उत्कृष्ट
यहाँ पर सूक्ष्म स्वच्छंद होता है, अवगणना करने से अथवा समागम को गौण करने से स्वच्छंद सूक्ष्म रूप से पैदा हो जाता है, किंतु भावी में वो बढ़ जाता है, उसका वृद्धि हो जाता है, फिर सचमुच बढ़ जाता है। इसलिए परम आदर भाव का अभाव हो जाता है, परम आदर आना चाहिए, इसका अभाव हो जाता है। वंदन करना नहीं करना वो बात तो कहीं की चली गई, परम आदर का अभाव हो जाता है। और बाह्य प्रवृत्ति में मुख्य अग्रेसर हो जाने से मैं भी कुछ हूं ऐसा होने से अपनी अल्पता, अपना दोष, अपनी लघुता को ऐसा जीव विचार नहीं कर सकता है। अपने उदय भावों में कितने कितने दोष होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, इसलिए वो अपनी लघुता कितनी है, अपनी पामरता दीनता कितनी है, उनको विचार करने की शक्ति जो है उनकी खत्म हो जाती है। विचार बल जो है, सद्विचार बल खत्म हो जाता है। कभी तो ऐसा मामला बनता है कि विचार हो सकता है, विचार बल नहीं रहता है, जानता है कि नहीं सतपुरुष को तो मुख्य करना चाहिए, लेकिन उसको इस विचार में बल नहीं रहता है उसको, क्यों कि दूसरी जगह वो अग्रेसर हो गया, मुख्य हो गया, प्रभाव में प्रचार में उसमें मुख्य हो गया, तो वो ऐसा जानता है कि नहीं सत्समागम तो करना चाहिए, जिसको सत प्रकट हो, जो ज्ञानी हो उसके संग में जाना चाहिए, ऐसा कहे भी, लेकिन इनका विचार बल नहीं हुआ इसके पीछे, तो उनको ये सत्समागम करने की प्रवृत्ति ऐसे ही नहीं रहती, दूसरे दूसरे प्रवृत्ति में उलझ जाता है जी। अपनी अल्पता और लघुता को वो जीव विचार कर सकते नहीं, अतः उसका स्वच्छंद रुकता नहीं, उसका स्वच्छंद फिर रुकता नहीं, आगे बढ़ जाता है। ये बात तो एक पक्ष की हुई जो विपरीत होती है। अब इसके प्रतिपक्ष की बात लेते हैं, परंतु जिसका दर्शन वो मिटने वाला है, ऐसा मुमुक्षु जी खरा आत्मभाव से सत्पुरुष के प्रति महात्म बुद्धि होने से वो सर्व प्रकार की बाह्य धर्म प्रवृत्ति और प्रचार प्रसार से भी प्रत्यक्ष सत्संग को ज्यादा महत्व देता है, और मैं तो सेवक हूँ इस वृत्ति से समागम करते हैं, वो सेवक हो जाते हैं, मैं कुछ हूँ ऐसा नहीं रखता है, मेरा क्या स्थान है, मैं तो संतों का, ज्ञानियों का, धर्मात्माओं का चरण रज हूँ, मैं सेवक क्या, मैं तो इनकी चरण रज हूँ, बस बात खत्म हो गई, फिर उनको कोई स्वच्छंद होने की गुंजाइश नहीं रहती, बात खत्म हो जाती है, उसको दर्शन हो गए, ये बात है।
जय हो जय हो।